आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ बिल को समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए इसकी तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली में नवकर महामंत्र दिवस में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के कामयाब सरकारी दौरे के बाद स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। जमहूरिया डोमिनिका की राजधानी में एक नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए। अमरीका ने चीनी दरामदात पर महसूलात में इजाफा करके इन्हें 105% कर दिया है। इससे पहले चीन ने जवाबी महसूलात वापस लेने से इनकार कर दिया था। और निशानेबाजी में विजय वीर सिद्धू अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बिल की मंजूरी पर पार्लियामेंट को मुबारकबाद देते हुए जिसकी वजह से मुसलमानों समेत सभी बिरादरियों के मफादात की हिफाजत हुई है कहा कि अब वक्फ के एतबार को तहफ्फुज हासिल होगा और पसमानदा तबके खवातीन और बच्चों के हकूक का तहफ्फुज होगा। वज़ीर-ए-आज़म कल रात नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसका एहतमाम एक प्राइवेट मीडिया हाउस ने किया था।
साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि साल 2025 के शुरू के 100 दिन में हुकूमत ने न सिर्फ कुछ फैसले किए हैं बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत बुनियाद डाली है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिन की हुसूलियाबियों से पता चला है कि भारत अब रुकने वाला, बेनतीजा और अपनी तरक्की से हटने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि इस मुद्दत के दौरान भारत दुनिया में ऐसा चौथा मुल्क बन गया है जिसने सैयारचे के हिस्सों को खला में ही जोड़ने और अलग करने की सलाहियत हासिल कर ली है।
100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की।
वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि आलमी सतह पर दरपेश बहुत से चैलेंजों के बावजूद भारत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है और उसने महज एक दहाई में अपनी महिषत को दोगुना कर लिया है। उन्होंने कहा कि कभी जिन लोगों का ख्याल था कि भारत सुस्त रफ्तारी से तरक्की करेगा, आज वो तेज रफ्तार और बेबाक भारत का नजारा कर रहे हैं।
जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि असल में इस तरह की सियासत भारत में समाजी इंसाफ के बुनियादी तस्वीर के खिलाफ है। उन्होंने कुछ पार्टियों पर नुक्ताचीनी की कि वो इसे वोट बैंक की सियासत के आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।
2013 में वक्त कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्त कानून ने संकुचित कर दिया गया।
ऑडियो विजुअल और तफरी से मुतालिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स अगले महीने मुंबई में मुनाकिद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इसका एहतमाम आर्ट और सकाफत की हौसला अफजाई के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वेव्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से भारतीय फनकारों को इख्तियारात हासिल होंगे और वो अपनी तख्लीकात में इजाफा कर सकेंगे, नीज वो इन तख्लीकात को आलमी सतह तक ले जा सकेंगे।
हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा।
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پرتگال کے اپنے کامیاب سرکاری دورے کے بعد آج صبح سویرے سلوواکیا کی راجدھانی براتسلاوا پہنچی۔ صدر جمہوریہ کا پرتگال کا یہ دورہ گزشتہ 27 سال میں پہلا سرکاری دورہ تھا۔ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صحافیوں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے مغربی امور کے سیکرٹری تنمئے لال نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے پرتگال کے وزیر اعظم لوئی مونٹینیگرو کے ساتھ ایک مفید اور نتیجہ خیز میٹنگ کی۔
The visit has helped in further strengthening the strong historical ties between India and Portugal, which also contribute to the
وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت نئی دلی میں نوکار مہامنتر دیوس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست وہاں لیے چلتے ہیں۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ نوکر مہامنتر دیوس روحانی ہم آہنگی اور اخلاقی شعور کا ایک اہم جشن ہے، جس میں نوکار مہامنتر کے اعتماد اجتماعی جاپ کے ذریعے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نوکار مہامنتر جین مت میں سب سے زیادہ قابل احترام اور عالمگیر منتر ہے۔ 108 سے زائد ملکوں کے لوگ امن اور اتحاد کے عالمی نعرے میں شامل ہیں۔ عدم تشدد، انکسار اور روحانی بلندی کے اصولوں سے وابستہ منتر روشن خیال انسانوں کی خوبیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور اندرونی تبدیلی کی تحریک دیتا ہے۔ یہ دیوس تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس، رواداری اور اجتماعی بہبود کی اقدار کو اپنائیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت مسلسل اصلاحات اور کلی اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ حکومت معاشرے کے ہر طبقے کو ترقی کے فوائد پہنچانے کو یقینی بنا رہی ہے۔ محترمہ سیتارمن نے یہ بات کل رات لندن کے انڈیا ہاؤس میں 2047 تک ترقی یافتہ معیشت بننے کے لیے بھارت کی تلاش کے موقع اور چیلنجز کے موقع پر موضوع پر ایک فائر سائڈ چیٹ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی کو مضبوط کر رہا ہے، تجارت کو ہموار کر رہا ہے اور لاجسٹکس کی لاگتوں کو کم کر رہا ہے۔
The Union Government's capital expenditure has been raised by 4.3 times from 2017-18 to 2025-26 budget. This significant increase has led to a qualitative transformation in India's physical infrastructure. The Prime Minister's Gati Shakti National Master Plan is strengthening multimodal connectivity, streamlining trade and reducing logistics cost. As a result, India's ranking in the World Bank's Logistics Performance Index has risen from 54 in 2014 to 38 in 2023.
بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی کی میٹنگ آج ختم ہو جائے گی۔ اس میں گورنر سنجے ملہوترا کی طرف سے اہم فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔ آر بی آئی کے گورنر ریپو ریٹ کے علاوہ آئندہ شرح ترقی، افراط زر کی صورتحال، صارفین سے متعلق قیمت کے عدد اشاریے، سی پی آئی کی افراط زر اور بھارتی معیشت میں جی ڈی پی کی شرح ترقی وغیرہ کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ مالی کمیٹی کی یہ میٹنگ 7 اپریل کو شروع ہوئی تھی۔ اس میں کیے جانے والے اعلانات کو آر بی آئی کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر ان اعلانات کے بعد ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ ایک رپورٹ۔
اب سب کی توجہ ریپو ریٹ سے متعلق آر بی آئی کے فیصلے پر ہے۔ اس اشارے پر آر بی آئی تجارتی بینکوں کو مختصر مدت کے لیے قرضے دیتا ہے۔ مالی پالیسی کمیٹی کی پچھلی میٹنگ سے اب تک مثبت اور منفی دونوں طرح کی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ افراط زر میں کمی آئی ہے اور ترقی نے کچھ رفتار پکڑی ہے۔ البتہ عالمی معیشت کے بارے میں تازہ تشویش پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے محصولات لاگو کیے جانے کے بعد تجارت میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا اثر بھارتی برآمدات اور مجموعی ترقی پر ہو سکتا ہے۔ ممبئی سے بھاونا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چین سے کی جانے والی درآمدات پر 104% محصول آج سے لاگو ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر چین کو صدر ٹرمپ کی جوابی محصولاتی پیکیج کے حصے کے طور پر محصول میں 34% اضافے کا سامنا تھا۔ البتہ چونکہ چین نے امریکی اشیاء پر 34% جوابی محصول لاگو کرنے کے اپنے وعدے کو واپس لینے سے انکار کر دیا تھا، لہذا امریکی صدر نے محصولات میں مزید 50% محصول عائد کر کے صورتحال کو اور بھی کشیدہ بنا دیا ہے۔ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि चीन जैसे ममालिक जिन्होंने जवाबी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करके अमरीकी कारकुनों के बोझ में इजाफा कर दिया है, गलती कर रहे हैं। इससे पहले चीन की वजारत ने कहा कि वो चीनी दरामदात पर मजीद 50% महसूलात आयद किए जाने के सख्त खिलाफ है। उसने कहा कि यह गलती के जवाब में एक गलती है। वजारत ने अमरीकी बरामदात के सिलसिले में अपनी जवाबी कार्रवाई में इजाफा करने का इरादा किया है। जमहूरिया डोमिनिका में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक सूबाई गवर्नर भी शामिल है। ये लोग राजधानी सेंटो डोमिंगो में एक मशहूर नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। इस हादसे में कम से कम 150 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हंगामी कार्रवाइयों के मरकज के सरबराह ने बताया कि मलबे में दबे हुए अफराद को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक कल जब यह हादसा पेश आया तो क्लब में 500 से 1000 की तादाद में लोग मौजूद थे। अलबत्ता लोगों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी है। ये छत मौसीकी के एक प्रोग्राम के दौरान गिरी है। इस प्रोग्राम में सियासतदान, एथलीट्स और कुछ दीगर मुमताज शख्सियतें मौजूद थीं। मलबे में दबे हुए अफराद को निकालने के लिए हंगामी अमले के तकरीबन 400 अफराद अब भी अपने काम में मसरूफ हैं। जाए हादसा पर मुतासरीन के कुनबे के अफराद जमा हैं और अपने अपने अजीजों को तलाश कर रहे हैं। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,645 हो गई है। 5,017 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 148 अफराद अब भी लापता हैं। इस बात का इंकशाफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने कल रात किया। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इंसानी उमूर के कोऑर्डिनेशन के दफ्तर ने खबर दी है कि मुल्क भर में 5,00,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी बचाने वाली दवाओं और हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई से महरूम हैं। इस दौरान भारत ने पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसियों के तहत म्यांमार में जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया हुआ है। भारत ने सबसे पहले म्यांमार की मदद की। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में कई टन तिब्बी इमदाद और राहती सामान पहुंचाया है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली मुसन्निफा कारकुन और वकील बानू मुश्ताक की मुख्तसर कहानियों के मजमुए हर्ट लैम को बैन अलाक्वामी बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी कहानियों के इस मजमुए का कन्नड़ से अंग्रेजी में तर्जुमा दीपा भष्टी ने किया है। निशानेबाजी में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में जारी ISSF आलमी कप में विजय वीर सिद्धू मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। खवातीन जुमरे में सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में अपना पहला सोने का तमगा हासिल किया है। भारत तमगों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। उसने अब तक सोने के 4, चांदी और कांसे के 1-1 तमगे हासिल किए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
शुक्रिया असलम बेग। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने दुबई के वलीअहद के भारत दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की भारत आमद, वजीर आजम से की मुलाकात, वजीर दिफा और वजीर खारजा के साथ अलग अलग मीटिंगों में कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल। रोजनामा मिलाद ने सदर जमहूरिया के पुर्तगाल दौरे से मुतालिक खबर को सफे अव्वल पर जगह देते हुए लिखा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा गया। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम के खिताब को अव्वलियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है। मुद्रा योजना से इंटरप्रीन्योरशिप को फरोग मिला है और इस योजना ने रोजगार पैदा करने और इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। और इसी अखबार की एक अहम सुर्खी है, हुकूमत ने मुल्क भर में वक्फ कानून 2025 नाफिज कर दिया है।
और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ बिल को समाजी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए इसकी तारीफ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के कामयाब सरकारी दौरे के बाद स्लोवाकिया पहुंच गई हैं। जमहूरिया डोमिनिका की राजधानी में एक नाइट क्लब की छत गिर जाने के हादसे में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर महसूलात में इजाफा करके उन्हें 105% कर दिया है। इससे पहले चीन ने जवाबी महसूलात वापस लेने से इनकार कर दिया था। और निशानेबाजी में विजय वीर सिद्धू अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।